आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्ते बच्चों, मेरा नाम हिमांशी भारद्वाज है और आज इस ऑडियो में हम जंतुओं में अनुकूलन के एक्सरसाइज और समरी पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की ऑडियो में हमने आपको पूरा चैप्टर समझाया था कि अनुकूलन क्या होता है और विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं में किस प्रकार के अनुकूलन या अडेप्टेशंस मिलते हैं, उस पर हमने चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की समरी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। इसके लिए आप पेज नंबर 81 पर आएंगे। आपने क्या सीखा? तो पहला बिंदु है सजीवों की वे शारीरिक विशेषताएं जो उन्हें विशेष वातावरणीय अवस्थाओं में जीवित रहने के अनुकूल बनाती हैं, अनुकूलन कहलाती है। कि अनुकूलन के बारे में जाना था कि अनुकूलन होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो क्या होती है कि जो सजीव हैं, जो जीव हैं, उनकी वे शारीरिक विशेषताएं या संरचनाएं जो उनको किसी विभिन्न विभिन्न तरीके के क्षेत्रों में या वातावरणों में रहने के काबिल बनाए या अनुकूल बनाए, उन्हीं को हम अनुकूलन कहते हैं या अडेप्टेशन कहते हैं। जलीय आवास के प्राणियों में श्वसन गल फणों द्वारा होता है। तो जो जलीय आवास के प्राणी होते हैं जैसे कि मछली, उसमें जो श्वसन क्रिया या रेस्पिरेशन होता है वह गिल्स के द्वारा होता है या गलफणों के द्वारा होता है, ये हमने पढ़ा था। अगली बिंदु है जलीय प्राणियों की आंखों पर निमेशक पटक पटल नामक झिल्ली पाई जाती है, यानी कि उनकी जो आंखें होती हैं हर वक्त पानी में रहती हैं, वे खराब ना हो जाए इसके इसके लिए क्या बनाया गया है, उसके ऊपर एक विशेष निमेशक पटल है जिसके कारण उनकी आंखें खराब पानी में नहीं होती। तो क्या पाया जाता है? निमेशक पटल नामक झिल्ली पाई जाती है। किन में? जलीय प्राणियों की आंखों में। अगली बिंदु है कई सामान्य स्थलीय जंतुओं के पैर नहीं होते हैं परंतु इनका शरीर पेशीयुक्त तो होता है जिसकी सहायता से ये भूमि पर रेंग कर गति करते हैं, जैसे सांप और केंचुआ आदि। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन क्या कह रहा है कि जो सामान्य स्थलीय जंतु कुछ ऐसे होते हैं जिनके पांव नहीं होते लेकिन उनका शरीर पेशीयुक्त तो होता है, मसल्स होती हैं, जिनकी सहायता से वे भूमि पर रेंगते हैं। और वो कौन कौन है? जैसे सांप और केंचुआ। आपने खुद भी देखा होगा कि सांप और केंचुआ रेंग कर चलता है। अगला, मरुस्थलीय प्राणियों की त्वचा मोटी चिकनी व शुष्क होती है। कैसी होती है? मोटी चिकनी और शुष्क। मरुस्थलीय कौन से प्राणी थे? जैसे कि ऊंट। ऊंट की जो त्वचा होती है वह मोटी होती है और चिकनी और शुष्क होती है। अगला बिंदु है ध्रुवीय प्राणियों के शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं, वह त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है जो कि उनके शरीर का तापमान नियंत्रित करती है। तो ध्रुवीय प्राणियों के शरीर पर क्या पाया जाता है? जो आइस वाले रीजन्स हैं या जहां बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है वहां क्या पाया जाता है? घने बाल उनके शरीर पर होते हैं और उसके नीचे मोटी वसा या मोटा फैट का लेयर होता है जो उनके शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है। फिर है वायवीय पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं। हड्डियों के खोखले कोशों में वायु भरी रहती है जिससे उनका शरीर हल्का रहता है। तो जो वायवीय यानी कि जो हवा में उड़ने वाले पक्षी हैं उनकी हड्डियां हमारी तरह डेंस नहीं होती। कैसी होती हैं? खोखली। और उनके अंदर उन कोशों में वायु भरी रहती है जिसके कारण उनका शरीर हल्का होता है और वो आसानी से उड़ सकते हैं। तो ये आपने इस चैप्टर में पढ़ा था, उसकी ये शॉर्ट समरी थी। अब हम पेज नंबर 82 पर अभ्यास कार्य पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से एक सही उत्तर को आपको चयन करना है, चुनना है। तो पहला प्रश्न है जलीय प्राणियों का अनुकूलन है। तो यहाँ जलीय प्राणियों का बात किया जा रहा है कि जलीय जो प्राणी हैं उनके अंदर किस प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है। पहला है गलफणे का पाया जाना, ब शरीर पर शल्कों की उपस्थिति, स अंडे देना और द उपयुक्त सभी। हमने पढ़ा था कि जो जलीय प्राणी है जैसे कि मछली, उसके गिल्स या गलफणे पाए जाते हैं, तो जो इसमें ऑप्शन अ है वह सही है, लेकिन बी में भी क्या लिखा है कि शरीर पर शल्कों की उपस्थिति यानी स्केल्स की उपस्थिति होती है, यह भी हमने जाना था। अगला है अंडे देना, तो जो जलीय प्राणी है वह अंडे भी देते हैं, तो तीनों ऑप्शंस हुए। और द में लिखा है उपयुक्त सभी, यानी कि जितने भी ऑप्शंस सारे ऊपर दिए हैं वह सभी, तो सही विकल्प कौन सा होगा, द उपयुक्त सभी। राजस्थान का राज्य पक्षी है, दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान का जो राज्य पक्षी है उसका नाम क्या है, तो चार ऑप्शंस में से पहला है मोर, कबूतर, गोडावण, तोता, इनमें से सही विकल्प आपको चुन है, तो इसमें से जो सही विकल्प है वह ऑप्शन सा यानी गोडावण है। इसको अंग्रेजी में हम द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, तो सही विकल्प है उसका नाम है गोडावण। ये एक पक्षी है जो विशेषकर राजस्थान में ही पाया जाता है और इसे वहां की राज्य सरकार ने इसको राज्य पक्षी घोषित किया हुआ है, तो सही ऑप्शन होगा गोडावण। तीसरा प्रश्न है, शरीर पर घने बाल व त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत कौन से आवास की विशेषता है। अभी हमने पढ़ा था कि जिनके शरीर पर घने बाल और त्वचा के नीचे मोटी सी वसा की लेयर होती है वे कहाँ मिलते हैं। देखें ऑप्शंस, जलीय, मरुस्थलीय, ध्रुवीय और उपयुक्त सभी। तो सही विकल्प होगा ध्रुवीय, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पशु हैं उनके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि पोलर बियर, और उनके त्वचा के नीचे मोटी वसा की लेयर सतह पाई जाती है, तो सही विकल्प होगा ध्रुवीय। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, सजीवों की वे शारीरिक विशेषताएं जो उन्हें विशेष वातावरणीय अवस्थाओं में जीवित रहने के अनुकूल बनाती हैं, डैश कहलाती हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसी विशेषताएं, ऐसी शारीरिक विशेषताएं या संरचनाएं जो किसी भी प्राणी को किसी विशेष क्षेत्र में या किसी विशेष आवास में रहने के लायक बनाती है, उसको हम अनुकूलन या अडेप्टेशन कहते हैं, तो सही जवाब जो यहाँ होगा वह होगा अनुकूलन या अडेप्टेशन, ठीक है। दूसरा, पक्षियों की हड्डियां डैश एवं शरीर डैश्ड से ढका रहता है, तो पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, ठीक है, और शरीर पंखों से ढका रहता है, ठीक। आप सभी ने पक्षी देखे होंगे, तो पक्षी कैसे होते हैं, उनकी हड्डियां खोखली होती हैं और उनमें वायु भरा रहता है, जिस कारण हड्डियां खोखली और शरीर पंखों से ढका रहता है, इसीलिए वो इतने हल्के होते हैं। तीसरा रिक्त स्थान है, जलीय जीवों में आंखों पर डैश पटल होती है, तो जो जलीय जीव हैं जैसे कि मछली, 24 घंटे वो कहाँ रहते हैं, जल में रहते हैं, उनकी आंखें खराब ना हो जाएं, इसलिए क्या होता है, निमेशक पटल नामक झिल्ली होती है जिससे उनकी आंखें बची रहती हैं। तो तीसरा जो रिक्त स्थान है उसमें आपको भरना है निमेशक पटल। अब आएंगे हम लघु उत्तरात्मक प्रश्न पर। इन प्रश्न पर हमको लघु एक से दो लाइन में उत्तर देना है। तो पक्षियों के शरीर में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें उड़ने के अनुकूल बनाती हैं? तो बहुत आसान प्रश्न है, इसके बारे में हमने पढ़ा भी है कि जो वायुमंडल में उड़ने वाले जो पक्षी हैं उनमें किस तरीके की अडेप्टेशन या किस तरीके के अनुकूलन पाए जाते हैं ये हमने जाना था। सबसे पहले तो हम उनकी हड्डियों के बारे में बात करेंगे कि उनका शरीर इतना हल्का होता है कि वो उड़ सकते हैं। इसके लिए आप पेज नंबर 80 पर जाएंगे, 80 नंबर पर हमने पढ़ा था वायु में उड़ने वाले प्राणियों में अनुकूलन। फिर से बता देते हैं कि इस श्रेणी में वह जंतु आते हैं जो स्थल पर रहते हुए वायु में भी उड़ सकते हैं, ठीक है। और आसमान में अनेक पक्षियों को आपने देखा होगा कि ये उड़ते हैं, और इसका सही जवाब अब कैसे कैसे लिखेंगे कि इनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। कैसे हो जाता है अनुकूलन? पहला अनुकूलन कि जो इनके आगे के पैर हैं वो किस में रूपांतरित, किस में चेंज हो चुके हैं? पंखों में। और इनका शरीर हल्का एवं नौकाकार होता है जिससे ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। तीसरा, इन पक्षियों के मुख में दांत नहीं होते परंतु इनकी चोंच कठोर एवं मजबूत होती है जिससे ये कीटों को सुगमता पूर्वक पकड़कर खा सकते हैं। फिर इनकी हड्डियों पे बात करेंगे कि इनकी हड्डियां खोखली होती हैं, हड्डियों के खोखले कोशों में वायु भरी रहती है जिससे इनका शरीर हल्का बनता है। इनका शरीर पंखों से ढका रहता है, इसे अभी हमने रिक्त स्थान में भी भरा था। इनका शरीर पंखों से ढका रहता है और पक्षियों का हृदय अधिक शक्तिशाली होने के कारण उड़ते समय पंखों को रक्त पोषण एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति करता रहता है। तो ये आपको लिखना था इसमें कि जो पक्षी हैं उनके शरीर में कौन कौन सी विशेषताएं या अनुकूलन पाए जाते हैं, तो ये आपको उसमें लिखना है। अगर आपको इतने याद न रहे तो आप तीन जरूर लिखें, हड्डियों वाला जरूर लिखें क्योंकि वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, यदि ऊंट के पैर गद्दीदार नहीं होते तो क्या होता? ये हमने जाना था कि जो मरुस्थलीय प्राणी हैं, जो कहाँ रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, सैंड में रहते हैं या रेगिस्तान में रहते हैं, उनके शरीर में कुछ अलग प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, जिसमें से एक क्या था कि उनके जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं। यदि गद्दीदार नहीं होंगे तो क्या होगा? वो धस जाएंगे, किसमें? रेगिस्तान में धस जाएंगे और उसमें चल नहीं पाएंगे। यदि हम रेगिस्तान जाते हैं तो हम उसकी ऊंट की सवारी करते हैं, इसीलिए उसको क्या कहा था हमने? रेगिस्तान का जहाज कहा था। तो जो उसके पैर होते हैं ना वो चौड़े और गद्दीदार होते हैं जिससे कि वो रेतीली जमीन पर धसते नहीं हैं। यदि वो ऐसे नहीं होंगे तो उनके पैर भी रेगिस्तान में धस जाएंगे और हम ऊंट की सवारी नहीं कर पाएंगे। तो यही इसका जवाब होगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर आएंगे। यदि ध्रुवीय भालू में त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत नहीं होती तो उसका क्या प्रभाव पड़ता? इस प्रश्न को हमने पहले डिस्कस नहीं किया, ये अच्छा हुआ यहाँ पे आया है। हमें सोचना चाहिए कि जो ध्रुवीय भालू है या पोलर बियर है उसकी अगर वसा नहीं हो, त्वचा के नीचे वसा नहीं होती तो क्या कोई फर्क पड़ता? बिल्कुल पड़ता। क्यों? क्योंकि जो उसके त्वचा के नीचे वसा की लेयर है या सतह है वह उसका तापमान नियंत्रित करने में मददगार होती है। कैसे? अगर वो नहीं होती तो जो ध्रुवीय क्षेत्र में इतना ज्यादा ठंड पड़ता है, इतना न्यूनतम जो वहां का टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है, माइनस में होता है, तो वो वहां पे भी आराम से इसीलिए रह सकता है क्योंकि एक मोटी त्वचा की लेयर प्रेजेंट होती है जो उसको क्या प्रदान करती है? ऊष्मा प्रदान करती है। इसीलिए यदि वो नहीं होती तो वह वहां पर जीवित नहीं रह पाता, ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। पहला, स्थलीय एवं जलीय जीवों के अनुकूलन में क्या अंतर है? तो जलीय जीवों के बारे में हमने बताया था जैसे कि मछली, और स्थलीय के बारे में भी हमने बात की थी कि जो स्थल पर रहते हैं उनके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहले एक बार हम फिर से अंतर बताने से पहले बता देते हैं आपको, अंतर आप किस तरीके से बताएंगे? आप एक तरफ लिखेंगे स्थलीय प्राणियों में अनुकूलन और दूसरी तरफ लिखेंगे जलीय प्राणियों में अनुकूलन, और फिर उनमें डिफरेंस करेंगे कि क्या डिफरेंस है। तो पहला है कि इनके गति के लिए पैर होते हैं और उनकी गति में गति के लिए पैर नहीं होते, उसकी जगह वहां पे क्या होती हैं? फिन्स होती हैं। दूसरा, इनमें क्या होता है, चलने के लिए जो पैर होते हैं उनको फिर पकड़ने के लिए, मतलब अच्छा खड़े होने के लिए उनमें हड्डियां जो होती हैं वो मजबूत होती हैं, और उनमें मजबूत जलीय प्राणियों में हड्डियां मजबूत नहीं होती। फिर इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो स्थलीय आवास के प्राणी हैं वे विभिन्न प्रकार के स्थलीय आवासों में पाए जाते हैं, जैसे एक सामान्य, मरुस्थलीय, पर्वतीय, ध्रुवीय और वायु में उड़ने वाले। वायु में उड़ने वालों को क्यों स्थलीय में लिया गया है? क्योंकि वह एक निश्चित समय के बाद आकर स्थल पर बैठते हैं। तो इनमें जो पांच तरीके के आवास हमें दिए हैं उनमें से एक 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 एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, किसमें? स्थलीय वाले कॉलम में। और उधर जलीय वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे? जलीय प्राणियों में जो अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे हम मछली की बात करें तो एक चित्र आपको 8.1 दिया गया था पेज नंबर 77 पर, जहां मछली की आंख पे निमेशक पटल होता है, फिन्स होते हैं, गलफड़े होते हैं, शल्क होते हैं, फिन्स पाए जाते हैं, ये सब लिखेंगे आप, इनको लिखेंगे। और यही सारी चीजें स्थलीय प्राणियों में नहीं पाई जाती हैं। उनमें क्या क्या पाया जाता है, जैसे रेगिस्तान वाले में, मरुस्थलीय में क्या? गद्देदार पैर होते हैं, लंबे लंबे पैर होते हैं, लंबी गर्दन होती है जिराफ की। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस तरीके से आप अंतर को स्पष्ट करेंगे कि इनमें गति करने के लिए क्या है? पैर। उनमें गति करने के लिए है फिन्स। फिर इनकी आंखों में निमेशक पटल पाया जाता है, किनकी? जलीय प्राणियों की। लेकिन स्थलीय प्राणियों की आंखों पर निमेशक पटल नहीं पाया जाता है। फिर इनमें जो एयर सैक होते हैं वो कैसे होते हैं? खाली होते हैं, मतलब हल्के होते हैं, एयर सैक्स बने होते हैं ताकि ये तैर सके। लेकिन हमारे में या जो स्थलीय प्राणी हैं उनमें एयर सैक्स नहीं होते, क्योंकि हम स्थल पे रहते हैं, हम पानी में नहीं रहते, हमें तैरने की आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए हम अधिक समय तक पानी में नहीं तैर सकते। यही डिफरेंस है। और वो इतनी देर तक क्या, वो पूरा जीवन काल जो उनका है उसको पानी में ही बिताते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी तरीके से आप अलग अलग स्थलीय जीवों के एग्जाम्पल्स लेके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको ये 6 लाइंस में लिखना है, या आप उसमें 5 से 6 डिफरेंस बता सकते हैं। अब बारी है दूसरे प्रश्न की, ऊंट के शरीर में क्या क्या विशेषताएं होती हैं जो उसे मरुस्थल में रहने के अनुकूल बनाती है। तो ऊंट के शरीर की बात की थी हमने। ऊंट, पहली बात कहाँ का आप इसमें लिखेंगे कि ऊंट एक मरुस्थलीय आवास का प्राणी है और उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, हम उसको जानने से पहले ये लिखेंगे कि मरुस्थलीय आवास में रहने वाले प्राणियों में निम्नलिखित शारीरिक विशेषताएं होती हैं। आप चाहें तो पेज नंबर 79 पे देख सकते हैं कि इनकी त्वचा का रंग भूरा होता है या हल्का भूरा होता है, इनकी त्वचा मोटी, चिकनी व शुष्क होती है, और अधिकांश प्राणी रात्रि चर होते हैं या रात में विचरण करते हैं और दिन की तेज गर्मी से बचने की कोशिश करते हैं। ऊंट क्या है, इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है कहाँ का? मरुस्थलीय आवास का। इसके पैरों के तलवे चौड़े एवं गद्दीदार होते हैं जिससे इसके पैर रेतीली जमीन पे धंसते नहीं हैं। फिर इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, ठीक, क्योंकि आराम से चल सकता है रेगिस्तान में। और अगर ये एक बार पानी पी ले, इस पॉइंट को भी आप लिखेंगे कि यदि एक बार पानी पी ले तो कई दिनों के पश्चात ये पानी पीता है या कई दिनों तक ये पानी पिए बिना रह सकता है। इसका मल भी शुष्क होता है। मल कैसा होता है? ड्राई। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा पानी पीता ही नहीं है। और ऊंट की त्वचा मोटी होती है जिससे इसे पसीना बहुत कम आता है। इस प्रकार के आवास में रहने वाले अन्य उदाहरण हैं लोमड़ी, खरगोश, सियार, भेड़िया, पर आपको सिर्फ ऊंट की बात करनी थी, ठीक है? तो ये आपने ऊंट के बारे में बताना है 5 से 6 लाइंस में, ठीक है? पेज नंबर 77 पे आप इसको देख सकते हैं जहां ऊंट का चित्र दिया हुआ है। तो अब आएंगे हम क्रियात्मक कार्य पर। तो आप पहला प्रश्न देखेंगे कि आपने आसपास के जंतुओं का अवलोकन किया होगा, उनमें पाए जाने वाले अनुकूलनों को सारणीबद्ध कर चार्ट बनाएं तथा कक्षा कक्ष में लगाएं। आसपास के जंतुओं को आपको देखना है, जैसे पक्षी, कोई भी पक्षी, या फिर गाय, कोई जानवर, गाय, भैंस, कुत्ता, और इनमें आपको क्या अनुकूलन मिलते हैं उनको आपको एक सारणी में लिखना है। ठीक, अगला है जलीय एवं स्थलीय पादपों तथा जंतुओं का अवलोकन कर उनकी विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो जलीय और स्थलीय पादप, आपको राजस्थान में स्थलीय कौन सा मिल जाएगा ज्यादा, मरुस्थलीय जानवर आपको ज्यादा दिखाई देंगे, उनका अवलोकन कीजिए, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए और उनकी विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, और जलीय में आपको मछली अगर मिल जाए मछली की बात कीजिए, या टॉर्टोइज आपको मिल जाए आप उसकी शारीरिक संरचना को देखेंगे और उस पर अपने दोस्तों से डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या उनके अंदर आपको अनुकूलन मिलते हैं। नेक्स्ट है वृक्षों पर पाए जाने वाले विभिन्न कीटों की आकृति, रंग आदि का अवलोकन कीजिए। तो जो वृक्ष हैं आपके आसपास, आपके स्कूल के पास, आपके घर के पास, उन पर आपने देखा होगा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, आपको उनकी आकृतियां देखनी है, उनका रंग देखना है। ठीक है, उन्हें ऑब्जर्व करना है और फिर डिस्कस कीजिए आप अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है अपने आसपास पाए जाने वाले पक्षियों की चोंच के चार्ट बनाइए। बहुत अच्छा ये एक्टिविटी आपको दिया है कि आप सुबह उठें, सबसे पहले पक्षी आपको सबसे ज्यादा सुबह के समय मिलेंगे और उनकी चोंच को नोटिस कीजिए कि कैसी कैसी चोंच आपको मिलती है, और कोशिश कीजिए आप उनको एक स्मॉल शीट पर बनाएं कि आपने इन इन तरीके के पक्षियों की चोंच देखी, और उसके नीचे उसका नाम जरूर लिखिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है विभिन्न अनुकूलनों के चित्रों का संग्रह कर स्क्रैप बुक तैयार कीजिए। तो विभिन्न अनुकूलन आपको देखने हैं जानवरों में, कौन कौन से अनुकूलन आपको मिलते हैं, और उनका चित्र लगाइए एक स्क्रैप बुक के अंदर, तैयार कीजिए कि ये आपने पौधा देखा तो इस पौधे में आपको क्या अनुकूलन मिले। जैसे कोई पौधा होता है वो बेल की तरह ऊपर चढ़ता है, कोई सीधा जाता है, तो इनमें क्या क्या अनुकूलन आपको मिले वो आपको लिखना है, या कोई जानवर है, जानवर के अंदर आपको कौन से अनुकूलन दिखाई दिए, आपको उन सबको बनाकर, चित्र बनाकर एक स्क्रैप बुक तैयार करनी है। ये सभी एक्टिविटी के काम थे, आपको इसको करना है। ठीक है, इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट ऑडियो में अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।